लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम लोगों के मूल और स्मृति का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के समस्त बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका अनुभव और ज्ञान युवाओं को भविष्य की ओर आशा और जिम्मेदारी के साथ देखने में मदद करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरुवार 29 जुलाई को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करके स्वच्छ, स्वास्थ्य और टिकाऊ पर्यावरण तक पहुंच को एक सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषित किया है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 161 मत पड़े, जबकि 8 देश मतदान से अनुपस्थित रहे। इसी तरह का एक प्रस्ताव जिनेवा स्थित मानव अधिकार परिषद ने भी अक्टूबर 2021 को पारित किया था। महासभा का ये प्रस्ताव भी उसी पर आधारित है और इसमें देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कारोबारी संस्थानों से सर्वजन के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाने का आह्वान किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
यूएन महासभा में ये प्रस्ताव मूल रूप से कोस्टा रिका, मालदीव्स, मोरक्को, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड ने पिछले महीने प्रस्तुत किया था। संयुक्त राष्ट्र में कोस्टा रिका की उप प्रतिनिधि मार्टिजा चान का कहना था,
लेट अस टेक दिस स्टेप फॉरवर्ड इनटू अ फ्यूचर वी नो इज पॉसिबल बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स इट फॉर ओवर 50 इयर्स सिंस फाल्कन।
आइए हम एक ऐसे भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएं जो हम जानते हैं कि संभव है, क्योंकि हम इसके लिए स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से पिछली आधी सदी से काम करते रहे हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की हिफाजत और बेहतरी करने के लिए, जो कि पूरी मानवता के लिए एक अनिवार्य लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र में कोस्टा रिका की उप प्रतिनिधि मार्टिजा चान का वक्तव्य। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने भी इस ऐतिहासिक प्रस्ताव के पारित होने का स्वागत किया है और कहा है कि ये ऐतिहासिक घटनाक्रम दिखाता है कि सदस्य देश हमारे तिहरे पृथ्वी संकटों यानी जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण का सामना करने के लिए एकजुट हो सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने तुर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित उस अभियान का आधिकारिक प्रारंभ होने का स्वागत किया है जिससे काला सागर से होकर यूक्रेन के अनाज निर्यात को संभव बनाने के लिए यूएन समर्थित एक समझौते को लागू करने में मदद मिली। ये निर्यात युद्ध जारी रहने और युद्ध भर में खाद्य मूल्यों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बीच अहम माना जा रहा है। काला सागर अनाज निर्यात समझौते के अंतर्गत यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से लगभग 26 टन अनाज लेकर रवाना हुआ रोजिनो नामक व्यावसायिक जहाज तुर्की के इस्तांबुल में निर्धारित निरीक्षण के लिए कुछ समय रुकने के बाद बुधवार को अपनी मंजिल लेबनान के लिए रवाना हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
यूक्रेन, रूस और तुर्की ने शुक्रवार 22 जुलाई को काला सागर अनाज निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त समन्वय केंद्र यानी JCC इस समझौते के तहत यूक्रेन के तीन काला सागर बंदरगाहों ओडेसा, चोर्नमोस्क और यूहिनी से व्यावसायिक खाद्य पदार्थों और उर्वरकों से भरे व्यापारी जहाजों का सुरक्षित परिवहन आसान बनाएगा। यूएन उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि इससे दरअसल बढ़ती वैश्विक खाद्य असुरक्षा का कारगर ढंग से सामना करने और उसकी रोकथाम करने में मदद मिलेगी। संयुक्त समन्वय केंद्र इस समझौते का पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक जहाजों के आवागमन की निगरानी करेगा। यूएन महासचिव ने इस समझौते को धरातल पर लागू करने में तमाम संबंधित पक्षों और संयुक्त राष्ट्र को एक सुविधा मंच मुहैया कराने के लिए तुर्की का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रूस और यूक्रेन को भी त्वरित गति से अपने वरिष्ठ प्रतिनिधि नियुक्त करने और उन्हें इस्तांबुल भेजने के लिए धन्यवाद दिया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गुरुवार 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर चेतावनी देते हुए कहा कि विश्व इस समय एक नए प्रकोप और स्पष्ट तीव्र हेपेटाइटिस संक्रमण का सामना कर रहा है जो बच्चों को प्रभावित कर रहा है। 28 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक बारुक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस HBV की खोज की थी और वायरस के लिए एक निदानकारी परीक्षण और टीका विकसित किया था। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
WHO प्रभावित देशों के वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर हेपेटाइटिस संक्रमण के कारण को समझने के लिए काम कर रहा है जो कि ज्ञात 5 प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस A, B, C, D और E में से किसी से संबंधित नहीं है। UN स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनाम गेब्रेयेसस ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लिए अपने संदेश में कहा कि अधिक प्रभावशाली होने के लिए मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से समुदायों में हेपेटाइटिस देखभाल प्रदान की जानी चाहिए और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। हालांकि अधिकांश तीव्र संक्रमणों से हल्की बीमारी होती है और यहां तक कि कई बार तो संक्रमण का पता नहीं चल पाता है, मगर कुछ मामलों में जटिलताएं पैदा हो सकती हैं और ये संक्रमण घातक साबित हो सकता है। केवल वर्ष 2019 में तीव्र हेपेटाइटिस ए से ई संक्रमण की जटिलताओं के कारण दुनिया भर में अनुमानित 78,000 लोगों की मौत हुई।
भारत में हाल ही में एक बार प्रयोग करके फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली में UN न्यूज के अंशु शर्मा ने भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के कार्यक्रम प्रबंधक दिव्या दत्ता के साथ एक खास बातचीत की।
भारत में 1 जुलाई से एकल उपयोग वाली कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कौन कौन सी वस्तुएं हैं, प्रतिबंध के बारे में हमें जरा विस्तार से बताएं।
2021 में गवर्नमेंट ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स की घोषणा की जिसके अंडर उन्होंने 19 कैटेगरीज और आइटम्स को बैन किया है, जैसे कि एयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन, प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक क्रॉकरी कटलरी ट्रेज और जो पतला रैपिंग पैकिंग होता है, प्लास्टिक पैकिंग अराउंड स्वीट बॉक्सेस, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स, PVC बैनर्स, तो इन सब का उत्पादन, आयात, भंडारण, बांटना, बेचना, इस्तेमाल करना, ये सब कुछ प्रतिबंधित है।
तो इन 19 चीजों को ही क्यों, इन्हीं पर क्यों प्रतिबंध लगा है?
इन पे इसलिए प्रतिबंध लगा है क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से भी ये पता चलता है कि ये जो है आइटम्स, इनकी उपयोगिता जो है कम है लेकिन लिटरिंग वैल्यू जो है तो बहुत जल्दी ये कूड़े में शामिल हो जाती हैं।
तो भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या कितनी बड़ी है और क्या केवल इन 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाकर इसका हल निकल सकेगा?
हमारा जो ये पर कैपिटा प्रति व्यक्ति वेस्ट है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये दिस इज अ मैटर ऑफ यू नो ग्रेट कंसर्न। जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, दिस इज रफली कंसिडर्ड टू बी 1/3, 1/3 ऑफ द टोटल प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम। तो अगर हम इस बैन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं तो लगभग मोटा मोटा हम 1/3 ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेंगे।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
चले हम प्रभु के मंदिर गाते हुए भजन, आओ चले हम प्रभु के मंदिर गाते हुए भजन, वही हमारा सृजनहार, वही हमारा तारणहार,
वही हमारा सृजनहार, वही हमारा दिया हमें जीवन नया, उसने किया हमें क्षमा व दया। उसने दिया हमें जीवन नया, उसने किया हमें क्षमा व दया।
जीवन की रोटी वही, आत्मिक प्यास बुझाता वही।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। इटली तथा यूरोप के अन्य देशों से संत पापा फ्रांसिस के साक्षात्कार हेतु रोम पहुंचे अल्फा यूथ कैंप के युवाओं को संत पापा ने संबोधित किया तथा इन युवाओं के साथ आए पुरोहितों, शिक्षकों और अल्फा के निर्देशकों की पहल की सराहना की। संत पापा ने युवाओं से कहा कि वे एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जिसे हम धर्म निरपेक्ष कहते हैं, जिसका अर्थ है कि हमारी संस्कृति इस दुनिया की वास्तविकताओं से अधिक और इसके पवित्र आयाम से कम प्रभावित होती है। तथापि उन्होंने कहा कि मानव हृदय की गहराई में हमेशा कुछ विशाल और कुछ अनंत की प्यास बनी रहती है। संत पापा ने कहा कि युवा लोग भी, जो वर्तमान कालीन जानकारी के साथ बड़े हुए हैं, हर युग में उठने वाले महान प्रश्न पूछ रहे हैं। हम कहां से आते हैं? जो कुछ भी मौजूद है उसके मूल में क्या है? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? लेकिन यह भी, दुनिया में इतना दुख क्यों है? छोटे बच्चे और निर्दोष लोग क्यों पीड़ित होते हैं? संत पापा ने कहा कि प्रभु येसु ने भी उनका अनुसरण करने आए दो युवाओं से सवाल किया था कि वे क्या खोज रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि आप इस प्रकार का सवाल करते हैं तो आपके मन में सत्य की तलाश करने की इच्छा है। कनाडा में अपने अनुभवों के बारे में संत पापा फ्रांसिस ने युवाओं को आलोकित किया और कहा कि कनाडा के मूल निवासी आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष युग में जी रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपनी परंपराओं और अपने वंशजों के मूल्यों को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि ये मूल निवासी हमारे लिए आदर्श हैं। इनका उदाहरण ग्रहण कर हम भी धर्म के प्रति उदासीन विश्व में मानवीय मूल्यों को जागृत कर सकते हैं। प्रभु येसु के अनुसरण का संत पापा ने युवाओं को परामर्श दिया और कहा कि येसु के अनुसरण का अर्थ है स्वार्थ से परे जाना और अपने आप से बाहर निकलकर जरूरतमंद की सहायता करना। उन्होंने कहा, आपके कैंप का नाम अल्फा है, जिसका अर्थ होता है जन्म, आरंभ, नव जीवन का नया उषाकाल। संत पापा ने कहा, हमारे अल्फा प्रभु येसु ख्रीस्त हैं। उन्हीं के सुसमाचार के अनुकूल जीवन यापन कर हम अपने जीवन को साकार करें। आर्मेनियाई कैथलिकों के धर्माधिपति 21वें आर्मेनी कैथलिक प्राधिधर्माध्यक्ष राफेल बेद्रोस ने लेबनान के पक्ष में की गई संत पापा फ्रांसिस की अपील के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया है। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार को साप्ताहिक आम दर्शन समारोह के दौरान लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त 2020 में हुए विस्फोट की तबाही को याद कर पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना की थी तथा आशा व्यक्त की थी कि लेबनान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से शांति की भूमि होने की अपनी बुलाहट के प्रति वफादार रहकर न्याय और शांति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा। संत पापा फ्रांसिस के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्राधिधर्माध्यक्ष राफेल बेद्रोस ने आशा व्यक्त की कि लेबनान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहायता से प्रत्येक वांछित न्याय को प्राप्त करने की दिशा में विश्वास के साथ सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ना जारी रखेगा। उन्होंने कहा, 2 साल पहले हुए विस्फोट के बाद लेबनानी लोगों की पीड़ा के लिए हम बहुत दर्द और निराशा महसूस करते हैं, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर और बेरोजगार हो गए, जिससे परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और अधिक बिगड़ गई। लेकिन हमें विश्वास है कि इस विस्फोट के पीछे कौन था, इस सच्चाई का पता लगाने के लिए स्वर्गिक न्याय विजयी होगा। यूक्रेन में ग्रीक कैथलिक कलीसिया के शीर्ष प्राधिधर्माध्यक्ष स्वियातोस्लाव शेवचुक ने एक वीडियो संदेश जारी कर विश्व का ध्यान यूक्रेन पर 162 दिन से जारी रूसी आक्रमण की ओर आकर्षित कराया है। 4 अगस्त को जारी उक्त वीडियो संदेश में यूक्रेनी ग्रीक कैथलिक कलीसिया के शीर्ष प्राधिधर्माध्यक्ष शेवचुक ने कहा, आज 4 अगस्त 2022 है और 162 दिन से यूक्रेनी लोग कब्जा करने वाले और नष्ट करने वाले अन्यायपूर्ण रूसी हमलावर के खिलाफ लड़ाई में अडिग खड़े रहे हैं। विगत दिनों भी लड़ाई अग्रिम पंक्ति में रही है और दुश्मन जहां तक उसका जानलेवा घातक हाथ पहुंचा सकता है वहां तक निर्दयता से यूक्रेनी भूमि के हर टुकड़े पर गोलाबारी कर रहा है। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं जिनमें खार्किव, मिकोलाइव, निकोपोल तथा चारिनिव जैसे शहर शामिल हैं। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं कि हमलावर विनाश, बर्बादी और मौत में कितना पैसा लगा रहा है। निकोपोल शहर पर केवल एक दिन में रूस ने यूक्रेन के ऊपर से कुल 8 क्रूज मिसाइलें दागी जिनकी लागत 1 करोड़ डॉलर से अधिक है। इस तरह हम देखते हैं कि कब्जा करने वालों के लिए भी अपने और अपने लोगों को यह समझाना कठिन होता जा रहा है कि इस मूर्खतापूर्ण युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रादी धर्माधीश शिवचुक ने कहा, यूक्रेन के लोग अडिग खड़े हैं, वे संघर्षरत हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और आज ख्रिस्तीय प्रार्थना के ज्ञान की तीर्थ यात्रा पर वे अपनी यात्रा जारी रखेंगे। ईश वचन के श्रवण तथा पवित्र बाइबल पाठ से वे साहस एवं शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों और यूक्रेनी नागरिकों से उन्होंने विशेष अनुरोध किया कि संकट के इस समय में वे प्रभु ईश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखें तथा प्रार्थना, बाइबल पाठ और मनन चिंतन द्वारा आत्मिक बल प्राप्त करें। नबी इसाईस के शब्दों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अन्यायपूर्ण शासक कितना ही जुर्म क्यों न कर ले, वे कभी सफल नहीं होंगे। नबी कहते हैं, तुम योजनाएं बनाओ लेकिन वे सफल नहीं होंगी क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों में ढारस बंधाते हुए प्रादी धर्माधीश शेवचुक ने कहा कि हमारी प्रार्थना घड़ी के साथ हम आपका समर्थन करते हैं। हम दुनिया भर में अपने समुदायों को संगठित करते हैं ताकि यूक्रेन अन्यायपूर्ण रूसी हमलावर के खिलाफ इस रक्षात्मक युद्ध में जीत सके। इराक में खलदेई ख्रिस्तियों के धर्माधिपति प्रादी धर्माधीश कार्डिनल लुईस साको ने देश में राजनीतिक उथल पुथल के खतरों की चेतावनी दी है। उन्होंने राजधानी बगदाद में जारी विरोध प्रदर्शनों तथा देश में व्याप्त राजनीतिक गतिरोध पर चिंता व्यक्त की जिसने इराक को लगभग 10 महीनों तक निर्वाचित सरकार के बिना रखा है। 4 अगस्त को जारी अपनी अपील में प्रादी धर्माधीश कार्डिनल साको ने वर्तमान प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदिमी और अन्य इराकी नेताओं के साथ अपनी आवाज मिलाते हुए राष्ट्रीय वार्ता का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बातचीत और समझौतों के माध्यम से समस्याओं का हल नहीं ढूंढा गया तो देश में राजनीतिक सुनामी का खतरा है। 10 अक्टूबर 2021 के चुनाव के बाद से इराक सरकार रहित है। ये चुनाव शक्तिशाली शिया मौलवी मुक्तदा अल सदर के नेतृत्व में सदरवादी आंदोलन द्वारा जीते गए थे। सदरवादी आंदोलन द्वारा सरकार बनाने के असफल प्रयास के बाद से सर्वत्र अशांति छाई हुई है तथा राजधानी बगदाद में आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।